कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के 11वें अध्याय के 27वें पद में इसराइल के परमेश्वर को न्यायी कहा गया है। तो बराबर परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। हमारे उन नए मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हर एक श्रोता भाई बहन को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे ताकि आज जो भी वचन हम अपने जीवन में सीखते हैं उसे ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो किसी प्रकार की बीमार से ग्रसित हैं, अपने जीवन से परेशान हैं, चिंतित हैं। प्रभु, आप उन पर भी अनुग्रह करें ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे किए जाएं, आप में विश्वास को रख सकें और आपको महिमा देने पाएं। इस समय हम में से हर एक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे न्यायों की पुस्तक में कि इसराइल को कुछ समय शांति मिलती थी और वह परमेश्वर को त्याग कर मूर्ति पूजा में लग जाता था। परिणाम स्वरूप परमेश्वर उन्हें दासत्व का दंड देता था। इस बार परमेश्वर ने उन्हें बद्दू लुटेरों से आतंकित कर दिया था। जब जब उन पर कोई कष्ट आता था तब तब वे परमेश्वर को पुकारते थे और परमेश्वर उन्हें उबारने के लिए किसी न किसी को खड़ा करता था। परंतु परमेश्वर की विशेषता यह है कि वह सबसे अधिक दुर्बल और हीन मनुष्य को चुनता है। अतः इस बार उसने गिदोन को चुना जो सबसे छोटे गोत्र के सबसे हीन परिवार का था। मेरे मित्रों, वह भीरु था, एक डरपोक था, वह शंकालु था। उसे आवश्यकता थी कि परमेश्वर उसमें विश्वास और साहस उत्पन्न करे जो परमेश्वर ने किया, परंतु उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। अतः उसने परमेश्वर के सामने एक शर्त रखी। आइए हम पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 36 से 38 पद में लिखा हुआ है, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी तब एक कटोरा भर गया। मेरे मित्रों, गिदोन ने दोहरी परीक्षा ली जिसका खंडन संभव नहीं था। उसने कहा, प्रभु, मैं एक बार और देखना चाहता हूं कि तू वास्तव में हमारे साथ है। इस बार मैं भेड़ का ऊन रखूंगा और चारों ओर ओस गिरेगी परंतु ऊन सूखा रहे। इस बात से मैं सहमत हूं कि उसने दूसरी बार भी परमेश्वर का परीक्षा लिया, क्योंकि पहली परीक्षा पर विश्वास करने में तो मुझे भी संदेह हो रहा था। या कहें दूसरे शब्दों में कि यह अति संभव था कि ऐसा हो सकता था कि कुछ स्थानों में आज भी ऐसा होता है, या हम यूं कहें कि एक बात होना तो संभव है, परंतु दोनों बातें होना परमेश्वर का चमत्कार ही है। उसने परमेश्वर से कहा कि पहली बार तो ऊन ओस से गीला हो परंतु दूसरी बार ऊन सूखा रहे। परमेश्वर गिदोन के प्रति कैसा अनुग्रहकारी है। हम देखेंगे कि परमेश्वर गिदोन को प्रशिक्षण देते हुए उस स्थान पर लाया जहां गिदोन देखेगा कि वह अपने आप में कुछ भी नहीं है। तब परमेश्वर उससे एक महायुद्ध में विजय प्रदान करेगा। मेरे मित्रों, पद 34 और 35 में हम देखते हैं कि उसकी सेना में भर्ती होने के लिए विभिन्न गोत्रों से मनुष्य उसके पास आए। इसराइल में तुरही फूकने का अर्थ था युद्ध की पुकार। मेरे प्रियो, सच तो यह था कि शायद वह अंतिम पुरुष ही होगा कि कोई उसकी अगुवाई तले आए। वह निश्चय ही युद्ध में उनकी अगुवाई के योग्य नहीं था। अतः परमेश्वर विशेष रूप से उसके जीवन में काम करता है। आइए हम आगे देखते हैं कि 300 सतर्क पुरुषों का चुनाव। न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, तब गिदोन जो यरूबाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिद्यानियों की छावनी उनकी उत्तरी ओर मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कह सकता, नहीं तो इसराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। मेरे मित्रों, अब गिदोन अपनी सेना का निरीक्षण करता है। उसके पास 32,000 पुरुष थे और गिदोन के अपने विचार में वे कम थे। मिद्यानी तो टिड्डियों के समान फैले हुए थे। यद्यपि वे अव्यवस्थित थे, संख्या में अधिक होने के कारण वे इसराइलियों पर भारी पड़ रहे थे। मेरे विचार में गिदोन फिर से तुरी फूंकना चाहता था कि और अधिक संख्या में पुरुष आए, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, 32,000 पुरुष बहुत अधिक हैं। इतनी बड़ी सेना लेकर यदि तू विजयी होगा तो तुम लोग अपने सामर्थ्य पर घमंड करने लगोगे। परमेश्वर के सम्मुख कोई मनुष्य घमंड न करने पाए। यही कारण है कि परमेश्वर आज भी दुर्बलों का उपयोग करता है। उसकी यही रीति भी है। अब वह उनकी संख्या कम करेगा। आइए हम पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। मेरे मित्रों, गिदोन की सेना में उपस्थित 32,000 पुरुषों में से 22,000 कम कर दिए गए। आपको मूसा की व्यवस्था में सैनिकों के लिए दिया गया निर्देश स्मरण होगा, जो डरता हो वह घर लौट जाए। मित्रों, मैं हमेशा यही सोचता हूं कि गिदोन घर क्यों नहीं लौटा। उसने कहा, जो डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पर्वत से लौट जाए। उसने यह क्यों नहीं कहा, जो डरता हो वह मेरे साथ घर लौट चले। उसे तो रुकना ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। मित्रों, अब गिदोन के पास 10,000 पुरुष ही रह गए थे, परंतु प्रभाव डालने के लिए वे पर्याप्त थे। परमेश्वर ने कहा कि वे भी अधिक हैं। इतने अधिक पुरुषों के साथ वह उसे विजयी नहीं कराएगा। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? यह परमेश्वर के चुनाव और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का सर्वोत्तम पाठ है। परमेश्वर दोनों में ऐसे ही सामंजस्य बैठाता है। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, मैं तेरे साथ जाने वाले पुरुषों को चुनूंगा, परंतु चुनाव उन्हें करना होगा। उन्हें सोते के पास ले चल, जो कुत्ते की तरह पानी पिएंगे वे तेरे साथ जाने के लिए चुन लिए गए हैं, और जो घुटने टेक कर पानी पिए उनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा आज का युग इंटरव्यू का युग है। यदि हम वहां होते तो उनसे अनेक प्रश्न पूछते जो हाथ पैरों पर झुककर पानी पी रहे थे। उनसे हम पूछते, भाई तुमने हाथ और पैर क्यों टेके? वह उत्तर देता, मैं सोच रहा था कि मैं कायरों के समूह के साथ घर क्यों नहीं लौट गया। घर में मेरी पत्नी है और बच्चे भी हैं। मेरे विचार में मुझे यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो घर में होना चाहिए था। युद्ध में मेरा मन नहीं लगता है। उसने अपना चुनाव किया और परमेश्वर ने अपना चुनाव किया। इसे ईश्वरीय चुनाव और मानवीय स्वतंत्र इच्छा कहते हैं। परमेश्वर अपना चुनाव तो करता है, परंतु वह आपको अपने चुनाव की स्वतंत्रता देता है। मेरे मित्रों, अब हम उनका इंटरव्यू लेंगे जो कुत्ते के समान पानी पी रहे थे। आपने पानी पीने की यह विधि क्यों चुनी? वह पूछता है, मिद्यानी कहाँ है? हम कहेंगे, एक मिनट थोड़ा रुको, आपने पानी पीने की यह विधि क्यों अपनाई? वह कहेगा, मैं 100% गिदोन के साथ हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन 300 पुरुषों में युद्ध की प्रवृत्ति थी। यदि आप उनसे पूछते कि क्या उन्हें यह बोध है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है, तो वे कहते, आपकी बात तो मुझे समझ में नहीं आती है, परंतु मैं उन मिद्यानियों का नाश करने पर उतारा हूँ। आप ईश्वरीय चुनाव और स्वतंत्र इच्छा पर जितना चाहे उतना विवाद कर सकते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि ऐसा ही होता है। मेरे मित्रों, आप बहस करके उसे क्रियाशील नहीं बना सकते, परंतु जीवन में ऐसा ही होता है। गिदोन की सेना में उन 10,000 पुरुषों में से हर एक जन ने अपनी स्वतंत्र इच्छा प्रकट की। परमेश्वर ने उनकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाली। आज परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा आपको उद्धार का निर्मल वरदान देता है। यह परमेश्वर का सच्चा और वैध प्रस्ताव है। वह कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार 6:37 में, जो पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मेरे मित्रों, अब बताइए, क्या आप ईश्वरीय चुनाव के बारे में विवाद कर सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो परमेश्वर के पास आ सकते हैं, यदि आप नहीं आते हैं तो मेरे पास आपके लिए यह संदेश है, आप चुने नहीं गए हैं। यदि आप आते हैं तो आपके लिए शुभ संदेश है, और यह है कि आप चुने हुए में से हैं। परमेश्वर ऐसा ही काम करता है। मित्रों, इन चुने हुए 300 पुरुषों को प्रायः गलत समझा जाता है। जब मैं एक विद्यार्थी ही था, तब मैं एक छोटी सी कलीसिया के साथ आराधना किया करता था। एक दिन जब मैं आराधनालय में पहुंचा, तब एक छोटी सी आकर्षक स्त्री ने मुझसे कहा, श्रीमान जी, हमारे यहाँ एक छोटा सा गिडियन या गिदोन समूह है। वास्तव में वह गिदोन समूह नहीं था, वे सर्वाधिक निरुत्साह और सुस्त जन थे। वह गिदोन समूह नहीं था, गिदोन का समूह तो समर्पित जनों का दल था, जो इसराइल की मुक्ति के लिए जान देने को भी तैयार था। मेरे मित्रों, वे जी जान से इस काम में समर्पित थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वे कुत्ते के समान पानी इसलिए पी रहे थे कि वे मिद्यानियों के खून के प्यासे थे, पानी के नहीं। पानी तो वे तब पियेंगे जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रियो, एक बार मैंने एक फुटबॉल का खेल देखा और उनमें खिलाड़ियों का साक्षात्कार सुना। उनमें से एक खिलाड़ी जो पीछे खेलने वाला खिलाड़ी था, खेल समाप्त होने के बाद भी अत्यधिक उत्साहित था, और वह विजय का श्रेय स्वयं की अपेक्षा अपनी टीम को दे रहा था। उसने कहा, हम विजय के लिए दृढ़ संकल्प हैं। मेरे मित्रों, यह गिदोन का समूह है। आज कलीसियाओं में ऐसे ही संकल्प की आवश्यकता है। आइए हम देखते हैं मिद्यानियों पर इसराइल की विजय। न्यायों की पुस्तक 7:10-14 में लिखा हुआ है, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाब होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की ओर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्री तीर के बालों के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह यहोवास के पुत्र गिदोन नाम एक इसराइली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। मेरे मित्रों, यह युद्ध से पूर्व गिदोन का अंतिम प्रशिक्षण है। वह बैरियों के शिविर के पास जाकर चुपचाप से उनका वार्तालाप सुनता है। उन्हें विश्वास हो गया था कि परमेश्वर मिद्यानियों को गिदोन की सेना के हाथ में कर देगा। यह परमेश्वर की ओर से था कि गिदोन युद्ध से पूर्व उनकी बातें सुनकर साहसी हो जाए। आइए हम आगे पढ़ें न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय उसके 16 पद से 22 पद तक। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और एक खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करो। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके, तब तुम भी छावनी की चारों ओर नरसिंगा फूंकना और ललकारना कि यहोवा की और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आदि में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगा को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतसिता तक का तब्बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। मेरे मित्रों, यह गिदोन की रणनीति का वर्णन है। उसने अपने 300 योद्धाओं को 3 दलों में बांटा। उसने प्रत्येक योद्धा को एक एक तुरही और एक एक घड़ा दिया तथा घड़े में मशाल जला कर रखी थी जिससे कि मशाल बाहर से दिखाई न दे। उन्होंने एक हाथ में घड़े और दूसरे हाथ में तुरही पकड़ी। युद्ध के मैदान में उनकी पुकार थी, यहोवा की और गिदोन की तलवार। परंतु रोचक बात और मजेदार बात तो यह है कि न तो उनके हाथों में और न ही गिदोन के हाथों में तलवारें थी। आपको ध्यान रखना है कि वे मिद्यानियों के अधीन थे और मिद्यानी उन्हें हथियार रखने नहीं देते थे, वे हथियार अपने ही पास रखते थे। अतः गिदोन के युद्ध में घड़े मशाले और तुरियां ही उपलब्ध थी। मित्रों, जैसा हम पहले देख चुके हैं कि मिद्यानी और अमालेकी रेगिस्तान की बद्दू जातियां थी। उन्होंने इसराइल पर आक्रमण करके उनकी फसलें और सारे संपत्ति लूट लिए थे। वे व्यवस्थित समुदाय नहीं थे, वे अव्यवस्थित रूप से ही विचरण करते थे, अर्थात यहाँ वहाँ डेरा डालते थे और न ही उनके पास व्यवस्थित सेना थी। उनके शिविर में सुरक्षा कर्मी तो थे, परंतु वे भी निश्चित सो रहे थे, कोई यहाँ तो कोई वहाँ। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उन पर कोई आक्रमण हो सकता है। अब पहली बात तो यह है कि रात के अंधकार में देख पाना कठिन होता है। गिदोन ने अपने योद्धाओं को 3 दलों में विभाजित किया था और वैरियों के शिविर के पास तैनात कर दिया था। एक निश्चित समय पर उन्होंने तुरहियां फूकी और अपने घड़े फोड़ दिए जिससे अचानक ही प्रकाश हो गया। तुरही की ध्वनि का अर्थ यह होता था कि एक तुरही के साथ सैकड़ों सैनिक हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि गहरे नींद में सोने वाले अचानक ही जगाए जाएं और वह भी युद्ध की पुकार से, तो वे क्या करेंगे। मित्रों, उन्होंने जल्दीबाजी में अपनी अपनी तलवार उठाई और हवा में घुमाना आरंभ कर दिया। इसराइलियों के पास तो तलवारें थी ही नहीं, अतः वे केवल मशाले लिए खड़े थे कि वैरी उसके प्रकाश में एक दूसरे का ही संहार करें। मिद्यानी शीघ्र ही पहाड़ों में भागे और जंगलों में चले गए। इस प्रकार गिदोन और इसराइलियों की महान विजय हुई। मेरे मित्रों, इस पाठ में हमारे लिए अद्भुत आत्मिक शिक्षाएं हैं। सबसे पहले तो मैं ऊन पर ओस गिरने के संदर्भ में कहूंगा कि हमें परमेश्वर से विनती करना है कि वह हमारे नीरस जीवन में ओस गिराए। होशिया की पुस्तक 14 उसके 5 पद में परमेश्वर कहता है, मैं इसराइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपने वचन में अनेक बार ओस की उपमा दी है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 के 13 पद में वह यीशु के बारे में कहता है, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहरा जल जो नीचे है। नीति वचन 19 उसके 12 पद में वह राजा के बारे में कहता है, राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के समान होती है। नीति वचन अध्याय 3 उसके 20 पद में परमेश्वर की महिमा का वर्णन है, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। और अंत में भजन संहिता 133 उसके 1 से 3 पद में परमेश्वर कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंचा। यह हरमोन के उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने सदा ही ऐसी आशीषें दी है, हमें उससे स्पर्श की आवश्यकता है, उस नूतन स्पर्श की। हमें गुलाब की कली पर और प्रातःकालीन घास पर की ओस की नाई इसकी आवश्यकता है। हमें उस कोमल स्पर्श की आवश्यकता है ताकि हम भी अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। होशे की पुस्तक 14 अध्याय उसके 15 पद में स्पष्ट किया गया है कि सोसन एक कोमल फूल है। हमारा प्रभु परमेश्वर हम पर उस प्रकार उतरेगा जिस प्रकार कटी हुई घास पर ओस गिरती है। हम चाहे कठिनाइयों में हो और उसने हमें कांटा छाटा हो, वह हम पर वर्षा की बूंद की नाई उतरेगा। मेरे मित्रों, हमारा प्रभु तो यरूशलेम को देखकर रोया था, परंतु क्या हम पापियों को देखकर रोते हैं? चुंगी लेने वाला छाती पीट पीट कर पापों का अंगीकार कर रहा था, परंतु हम क्या कर रहे हैं? हमें परमेश्वर के स्पर्श की आवश्यकता है जिससे कि हम दृढ़, अटल एवं अडिग तथा पैरों पर खड़े हो जाएं। मेरे मित्रों, हम भजनकार के साथ कहें, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करता रहूंगा। भजन संहिता 57 उसके 7 पद में हम इसे पाते हैं। हमें परमेश्वर की ओस की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में पवित्रता आ जाए। पत्रस अपने दूसरे पत्र अध्याय 3 उसके 14 में लिखता है कि हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हमें आज इसी की आवश्यकता है। परमेश्वर शुद्ध पात्र को ही काम में लेता है। पत्रस अपने पहले पत्रे अध्याय 1 के 16 पद में कहता है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे मित्रों, ये वचन परमेश्वर हमसे कहता है। पौलुस लिखता है दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। मित्रों, यह कैसा अद्भुत चित्रण एवं शिक्षा है जो यहां हमें दी गई है। अब घड़ों से प्रकट आत्मिक शिक्षा को देखिए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 उसके पद 7 में लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मित्रों, ये घड़े विश्वासियों की देह के प्रतीक हैं। रोमियों की पत्री अध्याय 12 पद 1 में पौलुस के कहने का अर्थ यही है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्रियो, यही कारण है कि हमें मनुष्य में महिमा नहीं देखना है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 21 पद में, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, वे मिट्टी के घड़े हैं। हमारे पास मिट्टी के पात्रों में धन है। हम में से कुछ जन टूटे नहीं हैं, इस कारण हम में से प्रभावित ज्योति या प्रकाश दिखाई नहीं देती है। यह प्रकाश हमारी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की है। इसकी ज्योति हमें चमकना आवश्यक है, परंतु वह तभी चमकेगी जब आपका घड़ा टूटेगा। हमारे संसार में जिसमें हम रहते हैं, ज्योति की नाई हमें चमकना है। फिलिपी की कलीसिया को पौलुस ने लिखा दूसरा अध्याय उसके 14 और 15 पद में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मेरे मित्रों, अब एक पल तुरहियों के बारे में देखें। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। मेरे मित्रों, यह विश्वासियों की गवाही का प्रतीक है। विश्वासियों की गवाही निश्चित एवं स्वच्छ होना चाहिए। आज मेरे और आपके जीवन में किस प्रकार की गवाहियां हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उस घड़े को तोड़ें। हमारे जीवन की जो भी घमंड है, हमारे जीवन की जो भी कमजोरियां हैं, त्रुटियां हैं, उसे हम अपने जीवन से निकाल दें। तब जाकर के हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति दिखने पाएगी और उस मशाल को दिखाएं, उस ज्योति को दिखाएं जो संसार आपके जीवन से प्राप्त करना चाहता है। अपनी गवाहियों को लोगों के बीच में बांटें, अर्थात तुरहियों के बारे में तुरहियां फूकें और इस बात को लोग देखने पाएं कि आप प्रभु के जन हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने गिदोन के जीवन से, उसकी सेना से अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आज आप निर्णय लें कि क्या आप डरपोक व्यक्ति हैं, क्या आप उस परमेश्वर की सहायता पाना चाहते हैं, क्या आप उस घड़े को तोड़ना चाहते हैं जो आपके घमंड का घड़ा है, क्या आप उस ज्योति को बाहर निखारना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कमजोर लोगों को चुनता है और अपनी महिमा लेता है। सिर्फ 300 पुरुष मिद्यानियों पर विजय हुए। क्या आप चाहते हैं कि आप भी एक विजयी जीवन जिए? यदि हाँ, तो आज ही निर्णय लें और परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने आप को अर्पण करें और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
वादा कोई भी उसका नहीं हो। वही रब है, वही जिंदगी है, वही रोशनी है, वो खुदा मेरा प्यारा, उसके बिना ना।